श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पत्रस की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है पवित्रता, सत्य ज्ञान और पुनरागमन। हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हुए, किन्तु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
भारत हमारा है सबसे प्यारा, हम पर उसी की रहमत यारा। पक्के इरादे हैं, हम सबसे आगे हैं, दुनिया में चमके हिंद है सर का बुलंद। यारों के यारे पे कुर्बानी जाए, पीछे हटेंगे ना हम। इतिहास यही है हमारा, इतिहास यही है हमारा, दुश्मनी नहीं है गवारा। इतिहास यही है हमारा। आओ आज मिलकर अहद कर ले, हम मिलके बांटे सारी खुशी सारे गम। आओ आज मिलकर अहद कर ले, हम मिलके बांटे सारी खुशी सारे गम। नफरतों को मिटाकर कायम करें अमन, हर कोई ये कहे यीशु का है चमन। हर घड़ी मुस्कुराए यीशु तेरा चमन, इस जहां तेरा करम। ये हवा पया में मोहब्बत, ये हवा पया में मोहब्बत, ये हवा पया में मोहब्बत। देखो सुनो समझो इशारा जरा, महकती हुई कहती है क्या ये हवा। देखो सुनो समझो इशारा जरा, महकती हुई कहती है क्या ये हवा। हम जिए तो जिए यीशु की अमानत, ये वतन है यीशु की अमानत, ये वतन है यीशु की अमानत। हाँ यीशु की मोहब्बत, उसी की है ये रहमत। हाँ यीशु की मोहब्बत, उसी की है ये रहमत। भारत हमारा है सबसे प्यारा, हम पर उसी की रहमत यारा। पक्के इरादे हैं, हम सबसे आगे हैं, दुनिया में चमके हिंद है सर का बुलंद। यारों के यारे पे कुर्बानी जाए, पीछे हटेंगे ना हम। इतिहास यही है हमारा, इतिहास
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से दूसरा पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि पत्रस हमें सचेत करते हैं कि हम झूठी शिक्षकों से बचे रहें, क्योंकि झूठे शिक्षक शैतान के रूप में हमें बरगलाते हैं और हमें गलत राहों पर ले जाते हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और हमें शिक्षा देते हैं। आज जब हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, एक साथ मिल करके अलग अलग स्थानों में हो करके, हम विनती करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो आपका वचन हर एक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। यह सच है कि हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आपका वचन रेडियो के माध्यम से उन तक पहुंच रहा है। प्रभु, आप इस वचन के द्वारा उन्हें आशीषित करें जो इस घड़ी बीमार हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें छुएं ताकि वे जाने पाए कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं, ताकि उनका जीवन आप में धन्य होने पाए। अपने वचन के द्वारा उन्हें आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे हैं कि पत्रस कलीसिया को चेतावनी दे रहा है कि उनके मध्य झूठे शिक्षक भी होंगे जो झूठी झूठी बातें सिखाएंगे और विश्वासी सहर्ष उनके पीछे हो लेंगे। उनका उद्देश्य प्रभु यीशु का महिमान्वन करना नहीं है, परंतु अपना स्वार्थ सिद्ध करना होगा। कलीसिया यह न सोचे कि परमेश्वर उन्हें दंड नहीं दे रहा है, अतः वे सही हैं। सच तो यह है कि परमेश्वर ने उनके लिए दंड की आज्ञा निकाल दी है। वे शीघ्र ही नाश किए जाएंगे, उनका विनाश ऊंघता नहीं है। परमेश्वर ने विद्रोही स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, तो प्रभु यीशु का इनकार करने वालों को वह कैसे छोड़ देगा। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए यह अति आवश्यक है कि हम प्रभु को अपने जीवन में आने दें, ताकि हम उस दंड से बच जाएं। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 5 पद को। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 5 पद में आगे लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, अर्थात नूह से पूर्व का संसार। अध्याय 3 में पत्रस 3 संसार की बातें करेगा, प्राचीन युग का संसार, वर्तमान युग का संसार और भविष्य का संसार। यहाँ पर लिखा है धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र और 3 बहुएं जल प्रलय से बच गए थे। आगे हम पढ़ते हैं भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। वे लोग धर्म का पालन तो करते थे, परंतु उनके धर्म में परमेश्वर नहीं था। वे शरीर की अभिलाषाओं में जीवन जी रहे थे। यह एक गलत धारणा है कि हम में अच्छाई है। रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मानववादी डॉक्टर टर्नबुल ने अफ्रीका में एक आदिवासी जाति इक की खोज की, जिनका जीवन जानवरों से भी अधिक गिरा हुआ है। माताएं 3 वर्ष के बच्चों को त्याग देती हैं कि वे अपना जीवन निर्वाह करें या मरें। ये बच्चे पेड़ों की छाल, जंगली फल या कीड़े मकोड़े या जंगली जानवरों के बचे हुए शिकार खाते हैं। उनके जो बलवंत है वे बूढ़ों का खाना छीनकर खा जाते हैं। लेखक कहता है कि इनके व्यवहार को पाशविक कहना जानवरों का अपमान करना है। डॉक्टर टर्नबुल कहते हैं कि हमारा मानवीय सदाचार जिस पर हम गर्व करते हैं वह अनुवांशिक नहीं है, वह समाज नामक जीवन निर्वाह का एक रूप है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर से रहित मनुष्य एक पशु है, और वह भी ऐसा कि किसी पशु के लिए लज्जा का कारण हो। अतः परमेश्वर ही है जो हम में सदाचार रोपित करता है। परमेश्वर ही हमें नैतिक मान्यताएं प्रदान करता है जो हम में अनुवांशिक नहीं है। मेरे प्रियो, नूह के युग में संसार परमेश्वर से विद्रोह कर रहा था। चारों ओर अनैतिकता व्याप्त थी। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। उस युग में पृथ्वी पर अराजकता व्याप्त थी, अतः परमेश्वर ने जल प्रलय द्वारा संसार को नष्ट कर दिया। नूह और उसके परिवार को छोड़ संपूर्ण संसार अभक्त हो गया था। यह तो अच्छा हुआ कि परमेश्वर ने संसार को उस समय नष्ट कर दिया। यदि वह प्रतीक्षा करता तो परमेश्वर के दंड के बाद उद्धार पाने के लिए कोई भी नहीं बचता। परमेश्वर ने दंड तो दिया, परंतु उसके मन में भविष्य का भी विचार था। उसके दंड से उसके सृजित मानव जीवन के लिए उसकी चिंता प्रकट होती है। मेरे प्रियो, जल प्रलय के तुरंत बाद परमेश्वर ने मनुष्य को एक आदेश दिया। उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 6 पद में, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। आज मृत्यु दंड के विरुद्ध बाइबल के संदर्भ के आधार पर विवाद करना मूर्खता है कि लिखा है तू हत्या मत करना। यह आदेश उस मनुष्य के लिए है जिसके मन में घृणा है और वह क्रोध के कारण हत्या करता है। यह हत्या करना है। परमेश्वर ने सरकार को अधिकार दिया है कि वह हत्यारे को मृत्यु दंड दे। क्यों? आप किसी हत्यारे को मुक्त करते हैं तो आप मनुष्य के जीवन का सम्मान नहीं करते, परंतु यदि आप हत्यारे की जान लेकर मानव जीवन का सम्मान करते हैं, क्योंकि उसने किसी मनुष्य की जान ली है और उसका कारण घृणा या स्वार्थ या पाप था। मेरे मित्रों, आज हम हत्यारे को मनुष्य कहकर उसकी जान लेना नहीं चाहते हैं, परंतु उसने किसी की जान ली है। आज अपराधी खुले घूम रहे हैं और निर्दोष मनुष्य कारावास में है। मैंने एक घर को देखा जिसमें 6 ताले लगे हुए थे, क्योंकि वहां चोरी हो चुकी थी। अपराधी और चोर खुले घूम रहे हैं। मानव जीवन का सम्मान तब प्रकट होगा जब अपराधी बंदी बनाए जाएंगे। हमारा देश शराबियों का ही नहीं, हत्यारों का और चोरों का है। यह एक चिंताजनक दशा है। आज हमारी यह दशा क्यों है? आप अपने बच्चों की ताड़ना नहीं करते, उसे कष्ट होगा या आप सोचते हैं, और वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा। आप कहते हैं कि बच्चों को नैतिकता की अपेक्षा शिक्षा दें तो वह अच्छा मनुष्य बनेगा। वह एक चोर है, एक हत्यारा है, एक समलैंगिक है, क्या वह अच्छा मनुष्य बन गया? मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने कहा था कि मनुष्य के मन से बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, अतः हमें अनुशासन की आवश्यकता है, उद्धार से रहित संसार को सरकार से दंड पाने की आवश्यकता है, अन्यथा देश का नाश होगा। नूह के संसार को दंड देने के बाद परमेश्वर ने प्रशासन को यह आदेश दिया था कि हत्यारे को दंड मिले। दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। इसका विवरण उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 19 में दिया गया है। सदोम और अमोरा ये 2 नगर हैं। सदोम और अमोरा को शरीर की अभिलाषाओं का दंड दिया गया था। सदोम में समलैंगिक आचार मान्य था। आज अनेक देशों में यह आचार मान्य है और लोग इसे स्वीकार भी करते हैं, जबकि परमेश्वर की दृष्टि में यह गलत है। हमारा पुराना स्वभाव बुराई प्रकट करता है। आप समलैंगिक आचार को मान्यता प्रदान करके उसका सम्मान नहीं बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि ऐसी दशा में वह मनुष्य को त्याग देता है। आप इसे पढ़िए रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 से 32, तब आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। यहां पर हम देखते हैं दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। धर्मी लूत जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। यहाँ दुखी शब्द का मूल में अर्थ है बुराई से पीड़ित। समाजवादी राष्ट्रों में मनुष्य का बल तोड़ने के उपाय हैं। उसे लगातार तीव्र प्रकाश में रखें, लगातार प्रश्न पूछते रहें, उसके नाखूनों को उखाड़ दें, तरह तरह की यातना दें। यहाँ दुखी शब्द का अर्थ यही है। लूत के लिए सदोम में रहना, सदोम नगर में रहना ऐसा ही पीड़ादायक था। उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते समय तो मुझे लूत के विषय में यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु पत्रस की टिप्पणी पढ़कर मैं प्रसन्न हूं। अन्यथा मैं कहता कि लूत का उद्धार नहीं हुआ था। लूत का सदोम जाना, वहां की राजनीति में पड़ना, परिवार का बिछड़ना और उसकी पुत्रियों का व्यवहार पढ़कर तो ऐसा ही लगता था कि वे लड़कियां सदोम में ही रहती तो अच्छा था। पत्रस कहता है कि परमेश्वर ने लूत को सदोम से निकाला, अर्थात वह धर्मी जन को बचाना चाहता है और आज भी वह बचाता है। पद 6 में लिखा है कि यह घटना भविष्य में भक्तहीनों के लिए उदाहरण ठहरे। यह कैसा उदाहरण है? स्वर्ग में हमारे लिए 2 आश्चर्य की बातें होंगी। एक, जिन्हें आप स्वर्ग का उत्तराधिकारी समझते हैं वे वहां दिखाई नहीं देंगे। दूसरा, जिन्हें आपने कभी उद्धार प्राप्त नहीं सोचा था वे वहां होंगे। लूत इसका उदाहरण है। मेरे विचार में लूत की इस संसार में कोई गवाही नहीं थी। स्वर्ग दूत ने लूत से कहा कि वे सदोम और अमोरा को भस्म करने जा रहे हैं। तब लूत अपने दामादों के पास गया, उनसे कहा, परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया है कि वह इस नगर को पाप का दंड देकर भस्म कर देगा, यहां से निकल चलो। तो उसके दामादों ने सोचा कि वह परमेश्वर का ठट्ठा कर रहा है। इससे प्रकट होता है कि उसका जीवन ऐसा था कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर उस जैसे मनुष्य से बात करेगा। मेरे प्रियो, यदि मैं केवल उत्पत्ति की पुस्तक ही पढ़ता तो मुझे कभी भी विश्वास नहीं होता कि लूत स्वर्ग गया। पत्रस कहता है कि परमेश्वर ने धर्मी लूत का उद्धार किया। जी हाँ, लूत को धर्मी कहा गया है क्योंकि वह परमेश्वर की दृष्टि में उचित था। हम पढ़ते हैं, धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। वह अन्य सदोम वासियों का सा जीवन नहीं जी रहा था। वह ऐसे जीवन से घृणा करता था। वह धर्मी था क्योंकि वह अब्राहम के समान परमेश्वर में विश्वास करता था, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में वह धर्मी था। उसका जीवन अब्राहम के समान नहीं था कि संसार के लिए परमेश्वर की गवाही हो। लूत धर्मशास्त्र में परमेश्वर का भक्त जन है क्योंकि वह परमेश्वर में विश्वास करता था, परंतु उसका जीवन उसके विश्वास का खंडन करता था। उसे वहां एक पल की शांति नहीं थी। आगे हम पढ़ते हैं, वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। मेरे प्रियो, कल्पना कीजिए कि वह कितना अधर्म सुनता होगा। स्पष्ट कहूं तो परमेश्वर के संतान अधर्म की बातें लगातार नहीं सुन सकती क्योंकि अधर्म की बातें अधर्म के काम उत्पन्न करती है। स्वर्गदूतों ने उससे कहा, लूत तू इस नगर से निकल जा क्योंकि तेरे रहते हुए हम इसे भस्म नहीं कर पाएंगे। इसी बीच अब्राहम लूत की आलोचना करने की अपेक्षा उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। हमारे लिए यह एक अच्छी शिक्षा है। मेरा एक मित्र प्रचारक है, वह हर एक बात और हर एक मनुष्य की आलोचना करता है। एक दिन वह एक ऐसे प्रचारक की आलोचना कर रहा था जिसका मैं आदर करता हूं और जानता हूं कि परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य रूप से काम में लिया है। मैंने अपने इस मित्र से कहा, क्या आपने उसके लिए प्रार्थना की है? उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसने कहा, नहीं। मैंने उससे कहा, यदि आपकी समझ में वह गलत है तो आप उसकी आलोचना करने की अपेक्षा उसके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अब्राहम ने सदोम के लिए प्रार्थना की। वह अपने भतीजे लूत का उद्धार चाहता था। उसने 50 धर्मियों के कारण सदोम की मुक्ति की याचना की, फिर 10 धर्मियों के कारण याचना की और फिर शांत हो गया क्योंकि उसके मन में लूत के प्रति संदेह होने लगा था। परंतु लूत धर्मी था। परमेश्वर ने उससे कहा कि उसके रहते वह सदोम को भस्म नहीं कर पाएगा, अतः उसे नगर से बाहर जाना ही होगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं, अब श्रीमती लूत ने जब पलट कर देखा तो वह नमक का खंभा बन गई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि उसके पलट कर देखने से वह नाश हुई? इसका अर्थ है कि उसका मन सदोम में लगा हुआ था। मेरे विचार में तो उसने लूत के नगर त्याग पर भी आपत्ति जताई होगी। उसके पलट कर देखने का कारण यह भी था कि उसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं था कि वह जो कहता है करता भी है। यहां हमारे लिए भी जो शिक्षा है वह यह है कि लूत का बचाया जाना कलीसिया का संसार से उठाया जाना प्रकट करता है। कलीसिया का उठाया जाना महाक्लेश के पूर्व होगा क्योंकि परमेश्वर अपने भक्त जनों को क्लेश में नहीं पड़ने देगा। लूत के समान निर्बल भक्त भी उठा लिए जाएंगे। यदि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है तो आप निश्चित जानिए कि आप भी प्रभु के साथ जाएंगे। यह एक अद्भुत उदाहरण है। जिससे स्पष्ट होता है कि कलीसिया महाक्लेश से पूर्व हटा ली जाएगी, उठा ली जाएगी, क्योंकि वह प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराई गई है। लूत भी धर्मी ठहराया गया था और बचाया गया। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर का वचन यही चाहता है कि हम उसकी ओर फिरें ताकि हम भी बचाए जाएं। आज हम जिस संसार में रहते हैं, चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उन्हीं बुराइयों में लिप्त होकर के बुराइयां करें, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम भी लूत के समान पवित्र जीवन जिए। लोगों के लिए हम भी प्रार्थना करें ताकि हम बचाए जाएं और अपने जीवन में उन आशीषों को देखने पाए जिसे परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको निर्णय लेना है, विचार करना है, क्योंकि पत्रस हमें बार बार इन्हीं बातों के द्वारा से चेतावनी दे रहा है कि कलीसिया को किस तरीके से आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा, मैं कैसे करूं तेरा, हर कदम हर राह रहबर तू बना, मुझे प्यार मिला है खुदा तेरा। शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा, मैं कैसे करूं तेरा, हर कदम हर राह रहबर तू बना, मुझे प्यार मिला है खुदा तेरा। शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा।